क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। यज्ञ के ही मंत्र से विश्व को गौरव मिलेगा, दिव्य पावन मंत्र से ही सूक्त मन सरसिज खिलेगा। सब चले मिल शक्ति बनकर, सब चले मिल शक्ति बनकर, शांति का संदेश लेकर, शांति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। धर्म के प्रहरी बने हम, मान संस्कृति का करें हम, ज्ञान की पावन ऋचा से योग का मंदिर रचे हम। अग्निपथ पर बढ़ चले हम, अग्निपथ पर बढ़ चले हम, मुक्ति का संदेश लेकर, मुक्ति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया।
ओम शांति। मैं ढूंढ था तुझे था, जब कुंज और वन में तू खोजता मुझे था, तब दीन के सदन में तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था। मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। मैं बाट जो होता था तेरी किसी चमन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू। आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में, बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त तुझसे जन की अनित्यता पर उत्थान भर रहा था, तब तू किसी पतन में बेबस गिरे हुए की हो के तू बीच में खड़ा था। मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में, तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। तेरा पता सिकंदर को मैं समझ रहा था, पर तू बसा हुआ था फरहाद कोहकन में। क्रिसस की हाय में था करता विनोद तू ही, तू अंत में हंसा था महमूद के रुदन में। प्रह्लाद जानता था तेरा सही ठिकाना, तू ही मचल रहा था मंसूर की टटन में। आखिर चमक पड़ा तू गांधी की हड्डियों में, मैं था तुझे समझता सुहराब पीले तन में। कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर, हैरान हो के भगवान आया हूं मैं शरण में। तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में विस्तार है गगन में। तू ज्ञान हिंदुओं में ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम कृष्णों में, तू सत्य है सृजन में, हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर दू, देखू तुझे दुर्गों में, मन में तथा वचन में, कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश, दुख में न हार मानू सुख में तुझे न भूलू, ऐसा प्रभाव कर दे मेरे अधीर मन में। कवि भगवान को खोज रहा है पर वो वहां है ही नहीं जहां वो उसे खोज रहा है। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे बुलाता, मैं तुझे बाजे बजा बजा के बुला रहा था, पर तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहां चरण में, मैं तुझे ऊपर ढूंढ रहा था तू नीचे था। अन्वेषण नाम की एक कविता। भगवान कहाँ है, सारा संसार ढूंढता है, मंदिरों में, जंगलों में, धार्मिक स्थानों में, और योगी धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जब तक जिनके बीच वो रहता है, जिन लोगों के बीच जो दुखी है, जो असहाय है, जो पीड़ा में है, जो दर्द में है, जब तक उनका दुख दूर ना करे तब तक उसको पाया नहीं जा सकता। बुद्ध स्वर्ग के द्वार पर खड़े थे और बुद्ध से कहा गया था कि आप स्वर्ग में प्रवेश कीजिए, पर बुद्ध ने कहा कि जब तक इस संसार का हर व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता दुखों से तब तक मैं अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। अव्यक्त बाप दादा ने कभी प्रश्न पूछा था कि सब जाने के लिए तैयार हो, सभी ने हाथ खड़ा किया था। शायद जगदीश भाई थे कि जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, तो बाबा ने उनसे कहा था कि आप रेडी नहीं हो, तो उन्होंने कहा था अभी सेवा पूरी हुई नहीं। जब तक सबको संदेश न मिल जाए तब तक कैसे जा सकते हैं। तो कल हमने देखा यज्ञ इतिहास का कारवा, 89, 88, 89, 90, 91, 24 अक्टूबर 1991 हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ सुबह, और शाम को अव्यक्त बाप दादा आए और बाबा ने संदेश दिया, ये होली स्थल है, ये होली स्थान है, यह आत्माओं के हिसाब चुकते होंगे, इसे होली स्थान समझना तो आत्माओं को भी वैसे वाइब्रेशंस आएंगे, यहाँ योग का कमरा है, ये भिन्नता है, यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट है, और वो कौन सी है, शुभ भावना और शुभ कामना की ट्रीटमेंट है, जो भी सहयोग देगा संकल्प से, बोल से और कर्म से, उसे ना केवल बाप दादा की परंतु सभी ब्राह्मणों की दुआएं मिलेगी, और हर कोई जो योगी है या सहयोगी है सबको बाबा याद, बाबा को सब याद है, और सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसी बहुत सी बातें बाबा ने कल कही जो हमने सुनी। आज हम बाबा के कुछ और महावाक्य सुनेंगे और साथ साथ हॉस्पिटल का किस तरह से विस्तार हुआ, ग्लोबल ट्री जैसे ग्लोबल क्या बन गया, एक झाड़ बन गया। ग्लोबल शब्द क्यों आया और कहां से आया वो भी एक प्रश्न है। तो 90s का जो दशक था उसमें यज्ञ की जितनी बिल्डिंग्स बनी सबका नाम क्या रखा जा रहा था, ग्लोबल ग्लोबल ग्लोबल। एक तरफ इधर हॉस्पिटल और उसी तरफ उधर लंदन में ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, उसकी भी बड़ी कहानी है। 1991 सितंबर वो बना और थोड़े ही समय के बाद ऑक्सफोर्ड ग्लोबल रिट्रीट सेंटर 93, 99 पीस विलेज, 97 दिसंबर जानकी फाउंडेशन बना फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर फंड्स के लिए। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन में वो लॉन्च हुआ, जिसका फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर रे भट्ट थे, पेट्रन लॉर्ड नोरी। तो इस तरह से जो भी बिल्डिंग्स मकान बनते गए, अधिकतर मकानों का नाम के पीछे क्या लगाया गया? ग्लोबल, विश्व के लिए। तो बाप दादा के ऐसी 18 मुरलियां है टोटल, 18, जिसमें बाबा ने हॉस्पिटल वालों से बात की, कभी कभी हॉस्पिटल वालों के साथ मधुबन वालों से भी बात की, कभी कभी उसी ग्रुप में आबू निवासी भी थे। तो आज हम वो सारी 18 मुरलियां देखेंगे। एक तो ये, और दूसरा साथ साथ हॉस्पिटल का विस्तार कैसे हुआ और किस किस तरह से विस्तार हुआ। तो आज इस भट्टी का कितवा दिन है? 100वां। और भट्टी का भी, और साथ साथ SSFE सॉलिड फूड वैकेशन, तीव्र पुरुषार्थ का एक महत्वपूर्ण अंग है नियंत्रण, संयम, अपने मन को और आत्मा को एक नए पैटर्न में, एक नई हैबिट में ढालना, एक नया संस्कार क्रिएट करना। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आहार में परिवर्तन न हो, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है या सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें सबसे गहरे संस्कार दो चीजों के, एक काम और दूसरा आहार। ये दो ऐसे संस्कार हैं कि जो सबसे डीप है, सब सेवाएं करते हुए ज्ञान योग की सारी धारणाएं होते हुए भी, ये दो ऐसे संस्कार हैं जो सबसे गहरे, सबसे डीप है। और वो केवल चिंतन मनन से नहीं जाएंगे, विशेषतः काम केवल चिंतन करना और मनन करना और अध्ययन करना, योग करना, बैठकर, खड़े रहकर, चलते फिरते, क्लास सुनना, सुनाना, लेक्चर्स देना, सेमिनार, वर्कशॉप, सेवाओं का विस्तार, केवल ये काफी नहीं है इससे मुक्ति के लिए, क्योंकि ये सबसे गहरा संस्कार है और उससे भी गहरा संस्कार है आहार का। जब तक आहार में परिवर्तन नहीं, तब तक ये काम का संस्कार नहीं जा सकता। तो एक तरफ इतिहास की चर्चा, एक तरफ इतिहास का अध्ययन, और साथ साथ आहार पर काम, एक तरफ अध्ययन और दूसरी तरफ सफाई। हिंदी में कहते हैं, जितना गहरा उपवास उतनी गहरी सफाई, जितना लंबा उपवास उतनी गहरी सफाई, डीप क्लेंजिंग। तो कल हमने शुरुआत देखी कैसे हुआ, आज हम विस्तार देखेंगे हॉस्पिटल का और साथ साथ बाबा के महावाक्य। तो ऐसे टोटल 18 महावाक्य, या फिर कहो 18 मुरलियां, 18 मुरलीज, जो कल संदेश सुनाया था वो अलग, वो छोड़कर। सबसे पहली मुरली है 10th दिसंबर 1992 की। हमने कल देखा था 24 अक्टूबर उद्घाटन हुआ, यहाँ पर 92 की बात है। दोनों से बाबा मिल रहे, मधुबन निवासी, हॉस्पिटल निवासी, दोनों ही अपनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, दोनों ही अपनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। ये ग्लोबल वाले शरीर को निरोगी बनाए, आत्मा को शक्तिशाली बना रहे, और मधुबन निवासी सभी को संतुष्ट करने की सेवा कर रहे। दोनों की सेवा देखकर बाप दादा हर्षित होते, सेवाधारी भी अथक भन सदा सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते। सभी की सभी को सेवा की मुबारक। सालगांव में भी अच्छी प्यार से सेवा कर रहे। ज्ञान सरोवर का उद्घाटन हुआ 1995, 23 एकड़ की जमीन, 23 एकड़ जमीन, काम चालू हो चुका है। तो बाबा उनको भी याद कर रहे हैं जो वहाँ सेवा कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट बात, शरीर को निरोगी बना रहे हैं और आत्मा को शक्तिशाली बना रहे हैं। ये सबसे पहली पॉइंट या सबसे पहला संदेश। बिना शारीरिक स्वास्थ्य के अध्यात्म में उन्नति मुश्किल है। जो व्यक्ति बीमार पड़ते रहता है, शरीर में कुछ ना कुछ होते रहता है, वहां पर आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है, क्योंकि शरीर की बीमारी व्यक्ति को उदास बना देती है। और यदि एक बीमारी छूटी और दूसरी आई और बार बार व्यक्ति बीमार पड़ते रहे, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, फिर मन उदास हो जाता है, डिप्रेशन, इच्छा नहीं होती है, रोज बुखार, रोज दर्द, रोज इतनी दवाइयाँ, अमृत वेला करने की इच्छा नहीं होती है, मुरली पढ़ना सुनना बोझ लगता है, सेवाओं में मन नहीं लगता है, सेवाएं सफर होती है, और फिर गिल्ट कॉन्शियसनेस आता है, और इतने सारे डॉक्टरों को दिखा दिया फिर भी ठीक नहीं हो रहे, उदास। बाबा क्या कह रहे हैं, शरीर को निरोगी बनाए, आत्मा को शक्तिशाली बना रहे। बाबा हॉस्पिटल वालों के लिए कह रहे हैं, बी योर ओन फिजिशियन, स्वयं का डॉक्टर स्वयं ही बनो। जितना हम अपने शरीर के विषय में जानते उतना कौन जानता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर क्या पूछता है, क्या हुआ बताओ, हम उसको बताते हैं। और कई सारी बातें तो केबिन से बाहर निकलने के बाद याद आती है कि ये बताया नहीं, और उसको जितना बताया उसमें कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। और ये भी है कि वो कितना सुन रहा है। जैसे एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक के पास एक असिस्टेंट डॉक्टर आता है नया नया नवसिखिया सीखने के लिए, तो वो देखता है उसका जो बॉस है वो एक एक पेशेंट के साथ एक एक घंटा बैठना पड़ता है, क्योंकि साइकियाट्रिक पेशेंट्स जो होते हैं उनकी हिस्ट्री बहुत बड़ी होती है, बचपन से चालू होती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो वो असिस्टेंट एक दिन कहता है अपने बॉस से कि सर आप एक एक घंटा कैसे सुन लेते हो पेशेंट्स की। वो कहता है सुनता कौन है, हू लिसन्स, आई जस्ट हियर। एक है लिसनिंग, एक है हियरिंग। हियरिंग मतलब इधर से सुनना, इधर से निकालना। लिसनिंग मतलब अटेंटिव हियरिंग इज नोन एज लिसनिंग। तो बॉस कहता है सुनता कौन है, मैं सुनता रहूं तो पागल हो जाऊंगा खुद ही। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का जिम्मेदार हम, अपने स्वास्थ्य के जिम्मेदार हम स्वयं है और कोई नहीं। अपने शरीर को समझना है, अपने शरीर के पैटर्न को समझना है, कहाँ उसको क्या होता है, थकान कब आती है, क्यों आती है, कारण क्या है? क्या हमेशा वो शरीर और शरीर की बीमारी की वजह से है या मन की बीमारी चल रही है? और यदि गहराई से विश्लेषण करोगे तो पता चलेगा मोर ऑफन देन नॉट अधिकतर वो मन की ही बीमारी है। मन में ही अचानक कमजोर विचार आता है और मन कहता है जाके तुरंत सो जाओ, बहुत थकान हो गई। थकान शरीर को नहीं हुई है, मन को हुई है। तो बाबा के ऐसे 18 महावाक्य है, 18 बार बाबा मिले हैं। हो सकता है कुछ मुरलियां छूट गई होगी, पर जितनी मिली या हमने पकड़ी या ढूंढी उसके ये 18 महावाक्य हैं। तो सबसे पहला महावाक्य, मधुबन निवासी प्लस हॉस्पिटल निवासी साथ में बाबा से मिल रहे 92 में ओम शांति भवन में। बाबा कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले शरीर को निरोगी बनाए, आत्मा को शक्तिशाली बना रहे, और मधुबन निवासी सभी को संतुष्ट करने की सेवा कर रहे हैं। कितना बड़ा काम है, जो भी यहां आ जाए वो संतुष्ट हो। और कई बार उनकी डिमांड्स ऐसी होती है, बहुत हाई डिमांड्स, भाई बहने आते हैं और साथ में टॉवल लाना भूल जाते, कपड़े लाना भूल जाते, आए बराबर डिमांड करते ये हमको चाहिए, तो क्या करेंगे? इरिटेट होके देंगे या खुशी खुशी से देंगे? टूथपेस्ट भूल गया। तो सबसे पहला ये पॉइंट है मुरली। दूसरी पॉइंट नंबर 2, 26th October 1991। बाबा ने इसमें 3-4 बातें कही हैं, और जो फेज 2 था हॉस्पिटल का उसका भी उद्घाटन हो रहा है, फाउंडेशन स्टोन लग रहा है उसके विषय भी। फाउंडेशन स्टोन उद्घाटन नहीं, उद्घाटन तो बाद में हुआ 95 में। तो उसके लिए भी बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जो भी अथक होके सेवा करेगा उसको बाप दादा का प्रेम और सहयोग मिलेगा। और दूसरी बात यहाँ पर है कि जो भी मुश्किल अगर आएगी जीवन में तो उसको खेल समझना। और तीसरा, बाप दादा हर एक को देख रहा है, हर एक के मन का और शरीर का रिकॉर्ड बाबा के पास है। तो महावाक्य पढ़ते हैं, बहुत अथक सेवा की है, अथक सेवाधारी को बाप दादा के दिल का स्नेह और हर समय का स्नेह सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। जो अथक होके सेवा करते हैं उनको क्या मिल जाता है? बाबा का स्नेह और सहयोग। तो आप सब ने कार्य किया या कोई ने कराया? बाबा ने कराया, निमित्त आपको बनाया ना, तो हर एक ने बहुत अच्छी सेवा की, सहज हो गया ना। कोई भी मुश्किल अगर आती है तो खेल के लिए आती है, समझो खेल कर रहे। कभी भी मुश्किल को मुश्किल नहीं समझना, मनोरंजन समझो, तो मुश्किल सहज हो जाएगी। यह निमित्त बनना भी भाग्य की निशानी है। और ऐसा हो नहीं सकता कि तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग पर मुश्किल ना आए। जो भी सब कर रहे हो और कोई उससे हटके कुछ करता है, तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को किस बात का सामना करना पड़ता है? विरोध, निंदा, अपमान, ग्लानी। पर बाबा क्या कह रहे हैं? सबको क्या समझो? मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, मिकी माउस का खेल, कार्टून शो, अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का भाग्य यह कम बात नहीं है। यह विरले को प्राप्त होता है। जिन्होंने भी हार्ड वर्क किया और समय पर कार्य पूरा किया, सबको पदम गुना मुबारक। बाप दादा वतन में बैठे भी देखता है कि क्या क्या कौन कर रहा है, चाहे दूसरा कोई देखे या न देखे, लेकिन बाप दादा सबको देखते हैं। सबके मन का रिकॉर्ड और तन का रिकॉर्ड दोनों ही देखते। कितनी बड़ी बात बोल दी, बाप दादा सबको देखते हैं, शरीर के रिकॉर्ड को भी और मन के रिकॉर्ड को भी, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हॉस्पिटल के दूसरे फेज के लिए वरदान, यह भी अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का फाउंडेशन हो जाएगा। अभी तक फेज वन था जिसका उद्घाटन किया, जो सामने वाला अंदर का जो इंडोर आईपीडी वो एडमिशन, उसके लिए बाबा आप कह रहे हैं निमित्त यह पत्थर का फाउंडेशन है, लेकिन अनेक आत्माएं दुआओं के भंडार से भरपूर हो आपको दुआएं देती रहेगी। तो यह फाउंडेशन लगाना अर्थात दुआओं के पात्र बनना। इसलिए और दिल से, उमंग से, तन मन धन से, मन वचन कर्म सब से बढ़ाते चलो और सबके साथ औरों की जीवन को श्रेष्ठ बनाते चलो। जो पहले उमंग से किया उससे भी ज्यादा उमंग उत्साह से कार्य संपन्न हुआ पड़ा है। तो ये था दूसरा संदेश या दूसरे महावाक्य। मुरली थी 26 अक्टूबर 1991। मुरली नंबर 3 18 जनवरी 1992। हॉस्पिटल स्टाफ को देखते हुए बाबा क्या कह रहे हैं। हॉस्पिटल में कोई दुखी आता तो खुश हो जाता है ना, ऐसा वातावरण खुशी का है जो कोई भी आए तो दुख भूल जाए, क्योंकि वातावरण बनता है व्यक्ति के वाइब्रेशन से। कोई दुखी आत्माओं का संगठन हो तो वहां का वातावरण कैसा होगा, दुखी। वहां का वहां कोई हंसता भी आएगा तो चुप हो जाएगा, और कहां खुशी खुश रहने वाले व्यक्तियों का संगठन हो, खुशी का संगठन हो, तो कैसी भी दुखी आत्माएं आएगी तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगी। तो मुस्कुराते रहना, हंसते रहना। हंसना क्या है, आधी दवाई। क्या कह रहा है बाबा, स्माइलिंग इज हाफ मेडिकेशन हाफ मेडिसिन, आधी दवाई। तो दवाइयों का खर्च कम हो जाएगा, पेशेंट भी खुश हो जाएंगे, खर्च भी कम होगा, हॉस्पिटल का खर्चा भी बच जाएगा, डॉक्टर का भी टाइम देना पड़ता है। जैसे साकार में देखा, ब्रह्मा के आगे कोई आता था तो क्या अनुभव करता था, बहुत बातें लेकर आते थे, लेकिन बाप के आगे आने से ना बातों का हल अंदर ही अंदर हो जाता था, यह अनुभव सुने हैं ना। ऐसे आप डॉक्टर्स के सामने कोई भी आए तो आते ही आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाए, सभी डॉक्टर्स ऐसे हो ना। जैसे बाप अलौकिक है तो बाप के बच्चे जो कार्य के निमित्त है वो भी सब अलौकिक होंगे ना। आप सभी की अलौकिक जीवन है या साधारण जीवन है, जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपके वाइब्रेशन बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। कम खर्च वाला नशीन। हॉस्पिटल लगता है या योग भवन लगता है, ऐसा आवाज होगा कि यह हॉस्पिटल नहीं है लेकिन क्या है, योग केंद्र है, हैप्पी हाउस है। ऐसे लौकिक में भी हैप्पी हाउस होते, जो भी अंदर आएगा हंसता ही रहेगा, लेकिन यह मन की मुस्कुराहट है, वह होता है थोड़े समय के लिए और यह है सदा काल के लिए। इसके लिए सदा हर्षित मूड में रहो, कुछ भी हो जाए अपनी मूड ऑफ नहीं करना। अब सुनो क्या कह रहे, कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन आप सदा हर्षित रहना। कितनी बड़ी बात कह दी, कोई गाली दे, कोई इंसल्ट करे, आप सदा हर्षित रहना। क्या बन जाए, ये योग केंद्र बन जाए, हैप्पी हाउस बन जाए, कोई भी आ जाए तो हंसता हुआ आ जाए, रोता हुआ है हंसता हुआ जाए, चाहे हॉस्पिटल, चाहे सेवा केंद्र, चाहे घर, चाहे मधुबन, कुछ भी, हैप्पी हाउस, खुशी के वाइब्रेशंस। और खुशी क्या है, आधी दवाई। अगर दवाई लेकर ठीक नहीं हो रहे तो समझना खुशी कम है, खुशी का डोज बढ़ाओ, खुशी का इंजेक्शन लगाओ। 92 18 जनवरी की यह मुरली है। और जैसे हमने कहा, साथ साथ हम कुछ और बातें भी देखेंगे। तो हॉस्पिटल की धीरे धीरे 5 ब्रांचेस खुल गई। सबसे पहली नीचे आबू रोड में जीवी मोदी रूरल हेल्थ केयर सेंटर, 94 में खुल गया। देखा होगा सबने शांतिवन के बाजू में, सूरत का मोदी परिवार था, उनके द्वारा। और हॉस्पिटल पेट्रन थे एक रॉबिन राम से ऑस्ट्रेलिया के, साथ में वहाँ आया हॉस्पिटल भी था, बाद में वो फिर उधर शिफ्ट हो गया। तो सबसे पहला ब्रांच, पांच ब्रांचेस है टोटल, पहली 94 में जीवी मोदी, उसके बाद में 2003 में GHIO ग्लोबल हॉस्पिटल और ऑप्थेल्मोलॉजी का जो सेंटर है नीचे वो खुला, और उसी को बाद में उसकी नई विंग खुली PC परमार फाउंडेशन ग्लोबल हॉस्पिटल आई केयर सेंटर 2007 में, और 2007 में ही ट्रॉमा हॉस्पिटल भी खुला। तो पहला जीवी मोदी, जैसे सेवाओं का विस्तार होते गया, नई नई बिल्डिंग्स लेते गए, और ये केवल हॉस्पिटल के साथ ही नहीं, जैसे हमने लंदन में भी देखा, भारत में भी देखा, अमेरिका में भी पीस विलेज, नैरोबी में स्थान बढ़ते गए, नई नई जगह लेते गए, नए नए इमारत आती। तो सबसे पहला जीवी मोदी, दूसरा जो था वो आई हॉस्पिटल, तीसरा ट्रॉमा हॉस्पिटल 2007, और उसी बीच में 2002 में BSESMG हॉस्पिटल मुंबई, जहाँ पर BMC तो उसने ज़मीन दी, BSES जो था उसने कंस्ट्रक्शन किया, इक्विपमेंट सप्लाई किया और ग्लोबल हॉस्पिटल को सौंप दिया मैनेज करने के लिए। तीनों मिलकर BSESMG हॉस्पिटल जो अंधेरी में है वेस्ट में वो हुआ। तो ये थी एक ब्रांच, और उसके बाद में पांचवी ब्रांच शिवमणि वो खुला 2010 में, ओल्ड एज होम जिसको कहते हैं, महेश भाई पटेल, उनके माताजी ने शरीर छोड़ा और उनके परिवार वालों को ये संकल्प था कि कुछ किया जाए सबके लिए, दूसरों के लिए, एक ऐसा घर बनाया जाए जिसमें सभी बूढ़े लोग रहे और जिनको ये अनुभव हो कि ये हम अपने घर में हैं और मधुबन में हैं। तो 2010 में ये शिवमणि खुला, जहाँ पर नीचे 30 ऊपर 30 ऐसे लगभग 60 कमरे, 29 29, तो इस तरह से वो डिवोट किया गया, और वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है, सबको लगता है जैसे हम अपने घर में हैं। तो ऐसे एक के बाद एक ये ब्रांचेस खुलती गई, टोटल पांच ब्रांचेस, टोटल पांच ब्रांचेस। शुरुआत ऊपर से हुआ, जीबी मोदी, एक आई हॉस्पिटल, ट्रॉमा हॉस्पिटल, BSES हॉस्पिटल और लास्ट शिवमणि। तो जैसे जैसे फंड्स आते गए और जैसे जैसे लोग सहयोगी बनते गए, वैसे वैसे विस्तार होता गया। 94, 2002, 2003, 2007, 2010। उसी तरह यदि यज्ञ को हम देखें तो 2005 ज्ञान सरोवर 23 एकड़ की लैंड में वो बन गया साल का, उसके लिए भी बाबा बीच बीच में कह रहे, इन्हीं मुरलियों में 93, 94 में, धीरे धीरे शांतिवन 96, धीरे धीरे सोलार 2010, और अगर भारत में देखो यहाँ वहाँ 2004 शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर हैदराबाद। तो धीरे 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 रिट्रीट सेंटर, हाँ वो आएंगे। पहले ये था ब्रांचेस, पांच ब्रांचेस। फिर से मुरली पर चलते हैं, क्योंकि हम मुरली और ये साथ साथ देखेंगे। तो कितनी मुरलियाँ हो गई, तीन। सबसे पहले आत्मा भी हेल्दी हो, शरीर हेल्दी हो और आत्मा शक्तिशाली, इसके लिए केवल आत्मा पर काम नहीं करना है, शरीर पर भी काम करना है। वो हर कारण ढूंढना है जो हमारे शरीर को अस्वस्थ कर देता है, और सबसे बड़ा कारण है ओवर ईटिंग। दूसरा मुरली सुनी, बाबा ने क्या कहा, जो अथक होके सेवा करते हैं उनको बाप दादा की मदद और प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा। दूसरा, जो भी मुश्किल आए जीवन में उसको क्या समझना, ये खेल है, और बाप दादा हर एक को देखते हैं। ये मत समझना कि बाबा को पता नहीं, पता है कि नहीं मैं यहाँ हूँ, पता नहीं उसको पता है कि नहीं मैं इस डिपार्टमेंट में मैं भी हूं। बाबा कह रहा है मैं सबको जानता हूं एक एक को। हम और एक बात सोच रहे थे, हॉस्पिटल को टोटल 30 साल हो गए और हमने ही इस 12 साल में इतनी सारी आत्माओं को देखा है। नर्सिंग असिस्टेंट आते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, चले जाते हैं। फिर नर्सिंग नर्सेस आती है, कुछ दिन काम करते हैं, चले जाते हैं। डॉक्टर्स कुछ दिन काम करते हैं, जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स थोड़ी देर काम करते चले जाते। हजारों लोगों को हमने आंखों के सामने आते देखा और जाते देखा। कोई कोई एक ही रात के लिए आता है, ज्वाइन करने आता है, रात भर रुकता है, सुबह पूछते कहाँ चला गया, होते रात में ही चला गया। क्यों? तो अचानक कुछ घर में परिस्थिति आ गई तो रातों रात निकल गया। एक ही रात के लिए, कोई एक रात, कोई दो रात, कोई एक हफ्ता, कोई दो हफ्ता, कोई एक दिन, दो दिन, हफ्ता, कोई महीना, कोई दो महीना, कोई 6 महीना, कोई 1 साल, कोई 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 30 साल, कितने आए और कितने चले गए। सोच रहे थे यस, इनमें से कई तो वो थे जो बिल्कुल ज्ञान में नहीं थे और कुछ वो थे जो ज्ञान में थे। तो बाबा को तो पता था, फिर भी कितनी पालना दी सबको। कितने डबल फॉरेनर्स बाबा से मिले, हिस्ट्री हॉल में मिले, 10-10 मिनट टाइम दिया और बाद में बाबा का हाथ उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या बाबा को वो पता नहीं था ये छोड़ने वाला है? तब भी पता था, फिर भी उसके प्यार में कमी नहीं है। ऐसा है भगवान। उसको त्रिकालदर्शी क्या सुना कि बाबा हरेक को जानता है, मन का रिकॉर्ड भी है और शरीर का भी रिकॉर्ड है, अर्थात आपके शरीर में जो बीमारियां है, दर्द है, वो भी उसको पता है। रात भर घुटनों में जो दर्द हुआ और कमर में जो दर्द हुआ, ये मत समझना कि अमृत पहला उसे वो पता नहीं है। कितना रात भर पुरुषार्थ करके उठ के आया है ये भी बाबा नोट कर रहे ऊपर बैठ के। तो ये भगवान का स्वभाव है, चाहे कोई रहे चाहे कोई ना रहे, सभी से प्यार। तो ये मुरली दूसरी और तीसरी मुरली हमने सुनी, खुशी का वातावरण हो, खुशी ना जाए। खुशी क्या है, हंसना क्या है, आधी दवाई। जो पेशेंट खुश रहते हैं वो जल्दी ठीक होते और जो दुखी रहते हैं उनके ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक ही नहीं होते, दवाई लागू नहीं पड़ती है, ऐसा कहते हो, दवाई सूट नहीं हुई, ऐसे शब्द होते हैं। और कोई इंसल्ट करे या गाली दे तो भी क्या, तुम्हारा मूड चेंज ना हो। ये भगवान का आदेश ही समझ लो। अगर श्रीमत थोड़ा हल्का शब्द लगता है और कहते हैं कि ये भारी है, नहीं होता हमसे, तो भगवान का आदेश है, ऑर्डर है, सुप्रीम कमांडर का ऑर्डर अपनी रूहानी सेना के लिए। अब आ जाओ मुरली नंबर 4, 16 दिसंबर 1993, हॉस्पिटल और आबिन निवासी बाप दादा के सामने बैठे हैं। इसमें बाबा ने कहा है, हॉस्पिटल वाले आबू वाले, इनकी पालना कहाँ से हो रही है, मधुबन से। इनको क्या मिल रहा है, मुरली, भोजन, ऊंचा वायुमंडल, श्रेष्ठ का श्रेष्ठ संग, इसलिए अपने भाग्य के गीत गाते रहो। खुशी ना जाए, माया आए या माया का बाप आ जाए, परंतु खुशी ना जाए, नाचते रहो और गाते रहो, माया का बाप ही क्यों ना आ जाए, पर तुम्हारी खुशी बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं आप सभी तो बहुत अच्छे, बहुत बहुत भाग्यवान है, क्योंकि मेजॉरिटी मधुबन निवासी हो या समझते हो कि मधुबन और हॉस्पिटल अलग है। मधुबन निवासी हो ना, किस वातावरण में रहते हो, मधुबन के वायुमंडल में रहते हो या अलग हॉस्पिटल के वायुमंडल में रहते हो? क्योंकि सबसे बड़ी पालना है ज्ञान की पालना, मुरली की पालना। तो वो हॉस्पिटल या अलग अलग घरों में सुनते हो व मधुबन में ही सुनते हो, तो सबसे श्रेष्ठ पालना कौन सी है, मुरली की पालना। तो मुरली क्या है, एक पालना, वो शरीर की पालना, वो आत्मा की, और दूसरी पालना है ब्रह्मा भोजन की पालना, एक आत्मा की एक शरीर की। तो दोनों मधुबन में होता है ना। अगर कोई घर में भी खाते हो तो क्या याद करके खाते हो, मधुबन में बैठे हैं ना, और हॉस्पिटल वाले तो खाते ही मधुबन में हैं, तो कितने लकी हो, सदा ब्रह्म भोजन मिलता है, यह कम भाग्य नहीं है। सदा आत्मा की पालना विशेष आत्माएं द्वारा होती ही रहे, यह भी कम पालना नहीं। सदा वायुमंडल श्रेष्ठ मिलता है, श्रेष्ठ संग मिलता है, कितना भाग्य। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ। दिनचर्या के आदि में ही पहला भाग्य भाव से मिलन मनाना है। दुनिया तड़पती रहती है और आप अमृत वेले से रात तक मिलन मनाते रहते हो। अगर रात को सोते भी हो तो कहाँ सोते हो, बिस्तर पर। तो देखो, आदि में भी भाग्य, मध्य में भी भाग्य, अंत में भी क्या भाग्य ही भाग्य। तो सदा अपने भाग्य की लिस्ट अपने सामने रखो। अगर भाग्य का चिंतन नहीं करेंगे तो कौन सा चिंतन होगा, व्यर्थ, निगेटिव। निरंतर सोचते रहो मुझे क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला। अगर ये चिंतन करेंगे तो दुखी होंगे, कंपेरिजन होगा। टाइटल भी बहुत अच्छा मिला, आबू निवासी। आबू निवासी सुनने से परमधाम निवासी तो सहज ही याद आता है, क्योंकि आबू है ब्रह्मा बाबा का। तो ब्रह्मा बाबा याद आता तो शिव बाबा सहज याद आएगा। कंबाइंड है ना, कंबाइंड, अकेले अकेले नहीं। तो आबू निवासी सुनने से ही स्वीट होम याद आ जाता है, ज़्यादा सहज याद में। हॉस्पिटल वाले रहते हो और या जो जो अपने स्थान में आबू निवासी कहलाते हो वो रहते हो, या सेंटर वाले रहते हो। तो इस तरह से बाबा बहुत सारी बातें कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर है ब्राह्मण अर्थात खुश नसीब, सदा खुश रहने वाले। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके, किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। माया हो या माया का बाप हो, लेकिन खुशी नहीं कम कर सके। किसी ने पूछा माया का बाप कौन है? रावण को माया का बाप कह दो, बाबा कह रहे। तो माया का बाप कौन है? रावण। और रावण का बाप तो खुशी कम नहीं हो सकती, चाहे जहां भी रहो, लेकिन खुशी गायब नहीं हो सकती, असंभव है। इतने फलक से कहते हो कि पता नहीं कभी कभी संभव भी हो जाए। यह अच्छी तरह से पता है ना कि ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। तो हरेक का चेहरा खुशनुमा खुश नसीब हो, हरेक के मस्तक पर खुशी की का भाग्य चमक रहा है ना। तो क्या सुना इस मुरली में, खुशी गायब ना हो, चाहे कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए। तो हॉस्पिटल के हमने देखे पांच ब्रांचेस, चार आउटरीच प्रोग्राम्स है। कौन कौन से? सबसे पहला तो जब हॉस्पिटल चालू हुआ उसी के साथ साथ चालू हुआ VOP, VOP अर्थात विलेज आउटरीच प्रोग्राम, जो हमने कहा ब्रह्मा कुमारीज में एक मिसिंग लिंक थी। चार शतकों से, 40 ईयर से ब्रह्मा कुमारीज आबू में है, पर गरीबों का एक प्रश्न था, आपने गरीबों के लिए क्या किया? VIP प्रोग्राम कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में UN के साथ कनेक्शन है, परंतु गरीबों के लिए क्या किया? तो वो गैप जो थी वो भरने का काम VOP ने चालू किया 1991 में। ऐसे लगभग 16 विलेजेस है, 20 विलेजेस जो अडॉप्ट किए गए, और इन 20 विलेज जो है गांव का सब कुछ हॉस्पिटल करता है। गाड़ी जाती है वहाँ, देखती है जिनको ज़रूरत है उनको यहाँ ले आती है, उनका फुल ट्रीटमेंट फ्री, सब कुछ, चाहे ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, सब कुछ, एडमिशन से लेके सब कुछ। तो ये प्रोजेक्ट कब चालू हुआ था? 1991 में। और वो सारे विलेज जहाँ कोई नहीं जा सकता वहाँ पर ये लोग पहुँचते, एक गांव छोड़कर खाली, उतरज। ये एकदम ही आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ पर पेशेंट जो आते हैं वो खटिया होती है ना, चार लोग पकड़ के पेशेंट को ऊपर डालते हैं और फिर ऊपर तक लेके आते हैं, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। इतने आदिवासी क्षेत्र है ये, उतरज शेरगांव ये एरियाज, गाड़ियाँ जा ही नहीं सकती, गाड़ियाँ क्या बैलगाड़ी भी नहीं जा सकती वहाँ, ऐसी एरियाज। इसलिए पेशेंट आते हैं वहाँ से, एक बार आते और फिर सीधा 6 मास के बाद, बीच में आते रहते खाली दवाई लिख के दे दो, क्योंकि लाना बहुत मुश्किल है, खटिया पे डाल के लेके आना पड़ता है पेशेंट को, मतलब जहां से रोड चालू होता है कच्चा रास्ता उसके भी अंदर है। एक बार सभी मधुबन निवासी घूमने के लिए गए थे, हॉस्पिटल निवासी, जंगलों में शेरगांव, और वहां भटक गए थे। रात को 12 बजे गाड़ी भेजनी पड़ी थी, इतना जंगल घना है पता ही नहीं चलता। तो VOP, उसके बाद में दूसरा है CSP जो 2004 में चालू किया, और इसकी शुरुआत हमसे हुई थी। जब हम यहाँ 2003 में आए थे दिसंबर में, और 6 मास के अंदर VOP चालू हुआ था, विलेज सर्विस सर्विस प्रोजेक्ट, जो आज टोटल 69 विलेजेस है एडॉप्ट किए हुए। रोज 2 डॉक्टर जाते हैं गांवों में और वहाँ पेशेंट्स को देखते हैं। उसके बाद है नेशनल प्रोग्राम 95 का स्टूडेंट्स के लिए, जो कि स्टूडेंट्स है स्कूल से एक भोजन हॉस्पिटल की तरफ से, कब से जा रहा है 95 से, रोज का एक दोपहर का भोजन। कितने बच्चे हैं, लगभग 2,694 स्टूडेंट्स हर साल। और एक लास्ट प्रोजेक्ट है आय का, 97 से जो चालू हुआ नेशनल प्रोग्राम है वो कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, जिसमें हर साल 2000 से ज़्यादा लोगों का कैटरेक्ट सर्जरी फ्री में होती है, टोटल फ्री। तो ये 4 क्या है, आउटरीच प्रोग्राम। उसके बाद में हॉस्पिटल बेस्ड एकेडमिक्स भी चालू हुआ, उसमें भी टोटल 6 एकेडमिक्स है। सबसे पहला है GNM का कोर्स, जो कि है 3 साल का कोर्स है GNM का, नर्सिंग का, नीचे ग्लोबल हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग में। और दूसरा है BSc नर्सिंग, जो 4 साल का कोर्स है, जो है नर्सिंग कॉलेज जो है वहाँ पर। एक DNBI का कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएशन, एक DNB फैमिली मेडिसिन जो ऊपर था अभी बंद है पर कुछ समय से, और रिसर्च और डिप्लोमा इन ऑप्थेलमिक टेक्निक्स, वो जो है 2 साल का कोर्स है। तो ये सारा है एकेडमिक्स। तो एक तरफ तो है सेवा, एक तरफ है नए स्टूडेंट्स को तैयार करना, और एक तरफ है फ्री सर्विसेज। तो सेवाओं का धीरे धीरे क्या हुआ, विस्तार। और फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स दूसरे, जैसे स्माइल ट्रेन, कटे होठ और तालू कटा, उसका फ्री सर्विसेस होती है हर साल, फंड्स आते हैं। वैसे ही डायलिसिस के लिए फंड आता है 2014 से, वैसे एक गिव इंडिया फंड है, वैसे एक जुवेनाइल पेशेंट फंड, जितने भी पुअर बच्चे उनका फ्री ट्रीटमेंट। तो ऐसे ये 4 प्रोग्राम्स हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे विस्तार होते गया होते गया होते गया होते गया। फिर से मुरली पर आते हैं, बाबा क्या कह रहे हैं। तो कितनी मुरलियाँ हो गई, 4। मुरली नंबर 5, बाबा कह रहे हैं कि पहले जो यहाँ के लोग हैं वो क्या सोचते थे, ब्रह्मा कुमारी कुछ नहीं करती है हमारे लिए, अभी सोचते कुछ करते हैं। तो कुछ नहीं से कुछ करते हैं हो गया, कुछ नहीं से क्या हो गया, कुछ करते हैं। क्योंकि हम अगर लोगों को कहें आप लोग क्या करते, तो हम कहेंगे हम सकाश देते, ये उनको समझ में नहीं आता है। उनको क्या समझ में आता है, पेशेंट मर रहा है उसका ट्रीटमेंट किया वो ठीक हो गया, ये दिखाई देता है। लोगों को क्या दिखाई देता है, यहाँ पे जंगल था यहाँ लोगों ने ट्री प्लांटेशन किया, ये दिखाई देता है। यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया, ये दिखाई देता है। ये साकार सेवा है, लोग इसी को देखते हैं। अगर हम कहें कि आप लोग क्या कर रहे हो, तो हम विश्व को शुद्ध वाइब्रेशंस पहुंचा रहे हैं, ये उनको समझ में भी नहीं आता है, दिखाई भी नहीं देता है, और मानते भी नहीं है। लोग किसको मानते हैं, जो दिखता है। तो हॉस्पिटल का क्या हालचाल है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। देखो हॉस्पिटल की विशेषता क्या है, वैसे सोचते हैं कि पेशेंट कोई नहीं हो और हॉस्पिटल, हाँ हॉस्पिटल का फायदा ब्राह्मणों को भी है। हॉस्पिटल के ने सेवा बढ़ाई, कुछ नहीं को करते हैं में परिवर्तन कर दिया, क्या कर दिया। अच्छा हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत करो, उसमें फुर्सत नहीं मिली। तो ये हो गया 95 की मुरली है, 9th जनवरी 95। नेक्स्ट 6th मुरली, हॉस्पिटल परिवार, मधुबन परिवार से मुलाकात, एक साथ सारे बैठे हैं, तो कौन कौन बैठा हुआ है? मधुबन वाले तो हर रोज की लॉटरी लेने वाले, कितनी लॉटरी मिलती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, लॉटरी आज चाहे मधुबन वाले, हॉस्पिटल वाले, ज्ञान सरोवर वाले, नीचे ऊपर रोज लॉटरी लेते रहते, किसी का भाग्य कम नहीं है, सबको एक दो से ज़्यादा भाग्य है, और भाग्य को बढ़ाते जाओ। तो मधुबन वाले अर्थात भंडारी और भंडारा दोनों भरपूर, सोच ये रखना कि मैं भरपूर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे भोजन, चाहे वस्त्र, चाहे वस्तुएं, कुछ भी, हमेशा ये सोचना मेरा शरीर भरपूर है, मेरा मन भरपूर है, शरीर भरपूर है, मुझे बाहर का कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें मेरी पालना नहीं करती। तो अपने आप चीज़ें भी मिलेगी, सब मिलेगा, पर अगर ये सोचोगे कि मुझे चाहिए 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 तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मुरली 7 नंबर की मुरली 95th मार्च 95। तो बाबा ने कहा हॉस्पिटल भी वृद्धि कर रहा है, जितना जितना दिल से सेवा करते हो, तन से सेवा करते हो, लेकिन दिल से सेवा करना अर्थात दिल की दुआएं लेना, तो बाप दादा के दिल पर नंबर 1 चढ़ते हो अगर दिल से कोई सेवा करता है तो चाहे कोई भी हो, तलहटी वाले, म्यूजियम वाले, आबू निवासी, पीस पार्क, संगम भवन, बाबा कहते ये क्या है सब अष्टभुजाएं, विशेष तो अष्टभुजाओं को विशेष याद पर, अभी तो बहुत सारी भुजाएं बन गई, पहले अष्टभुजाएं थी। ये मुरली है 95 की, ज्ञान सरोवर को भी बाबा कह रहे हैं, ज्ञान सरोवर भी अभी 7 भुजाएं, ये जो ज्ञान सरोवर है ये है 8वीं भुजा, ज्ञान सरोवर बन गया तो उसको बाबा ने क्या कहा, ये है 8वीं भुजा। तो मधुबन, हॉस्पिटल, ज्ञान सरोवर, म्यूजियम, संगम भवन और पीस पार्क और तलेटी और आबू निवासी, ये सब क्या हो गए 8 भुजाएं मधुबन की 95 में। अभी सोलर, मनमोहिनी, प्रकाशमणि पार्क, अभी तपोवन, आनंद सरोवर, अभी मानसरोवर, अभी शिवमणि, वो नर्सिंग स्कूल, वो नर्सिंग कॉलेज, अभी आई हॉस्पिटल, वो जीबी मूवी हॉस्पिटल, अभी वो ट्रॉमा हॉस्पिटल, अभी जालौर का भी एक केंद्र है, अभी बनना चालू है, नए नए कंस्ट्रक्शन चालू है अभी, पर सब मधुबन ही है। क्या समझना है, सभी मधुबन, आबू निवासी, तलेटी निवासी, सब मधुबन है। नेक्स्ट 21 नवंबर 98, ट्रस्टी आए हैं हॉस्पिटल के, उनसे पापा मिल रहे, हॉस्पिटल की सेवा कर रहे हो, शरीर की भी सेवा, तो डबल सेवा के निमित्त हो, चांस लेने वाले चांसलर, डबल ट्रस्टी, हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी, जीवन के भी ट्रस्टी। क्या समझना है, निरंतर मैं ट्रस्टी हूँ। जैसे अगर कोई ट्रस्ट बनाया और आपको ट्रस्टी बना दिया जाए तो हमेशा क्या रहेगा बुद्धि में, मैं ट्रस्टी हूँ। कोई कंपनी है और उसका आपको ट्रस्टी बना दिया जाए, सोचो भगवान ने भी, ये यज्ञ एक ट्रस्ट है, हम कौन है, ट्रस्टी। बाबा ने वैसे ट्रस्टी तो बनाया था, जो कन्याओं को सबको अपना इविल कर दिया था, ट्रस्ट था ना समिति। नेक्स्ट मुरली ये थी 21-11-98। नेक्स्ट 9वीं मुरली 1 मार्च 99 की, ये बहुत बड़ी मुरली है, इसमें बहुत सारी बातें बाबा ने कही है। 9th, एक तो खुशी कभी भी न जाए, एक रस रहना है, मौजों की जीवन है, पेपर पास करना है, मौज में रहने वाले सेवाधारी हो, हॉस्पिटल में रहने वाले सेवाधारी नहीं हो, मौज में रहना है, कंफ्यूज होने वाले नहीं हो, मूंझने वाले नहीं हो, मौज में रहने वाले हो, और सदा खुशी रहे, एक रस। सब जगह बाबा एक बात तो हमेशा कह रहे, खुशी 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 न जाए, क्योंकि जब खुशी चली जाती है तब व्यक्ति असंतुष्ट होता है, और जब असंतुष्ट होता है तब छोड़ने का विचार आता है, नाराज हो जाता है, उदास होता है, सोचता है यहाँ नहीं रहना चाहिए मुझे, कारण फिर कोई भी हो, पर सबसे गहरा कारण क्या होता है, असंतुष्टता, खुशी का गायब होना, फिर ऊपर ऊपर से ढेर सारे कारण बन जाते हैं। तो नेक्स्ट मुरली ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, ग्रुप्स पे सारा भेज देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट मुरली है 30 नवंबर 99 की, 1-2 लाइन है केवल, आप सभी क्या कमाल करेंगे, जो पेशेंट आवे उनको पेशेंस देकर दूसरों को लेकर आओ, पेशेंट को पेशेंस देना, पेशेंट को क्या देना, पेशेंस, पेशेंस अर्थात धीरज, आदत, धीरज धरो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट को थोड़ी भी बीमारी हो जाती है तो उसको ये लगता है कि मैं अब ठीक होने वाला नहीं हूँ, हिम्मत ही कॉन्फिडेंस ही चला जाता है उसका, लकवा हो गया तो सोचता है अब मैं कभी नहीं चल सकूँगा, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया तो सोचता है मैं पता नहीं चल पाऊँगा कि नहीं, तो क्या देना है उसको, हिम्मत। नेक्स्ट 11वीं मुरली ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से 11/3/2002, ट्रस्टी उठो। ये अच्छी बात पापा ने कहा, कमाल की बात हंसने की है, सभी से ज़्यादा हॉस्पिटल को फ़ायदा, बाप दादा ने देखा मधुबन वालों को भी क्या है, कोई भी शरीर छोड़ता है ना तो मधुबन वालों का नाश्ता बंद नहीं होता, और यहाँ तो हर सीज़न में 2-4 तो होते ही, फ़ायदा है ना मधुबन वालों को, खाना तो बंद नहीं होता और बच्चों को भी फ़ायदा है। और लेकिन सोशल वर्क के हिसाब से भी आबू निवासियों की वृत्ति चेंज होने लगी है, हॉस्पिटल के सेवाधारी उठो, अच्छा है। भुवनेश्वर में भी एक हॉस्पिटल खुली है, कौन सी है ये पता नहीं, हाँ पर कौन सी, तो बाबा भाई ये कर रहे। नेक्स्ट 18 अक्टूबर 2002 में वही भाग्य की बात, भाग्य का सितारा चमकता रहे, वाह 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 बाबा वाह भाग्य वाह, खुशी ना जाए। नेक्स्ट और एक उसी मुरली में, एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट है, एक सेकंड भी वेस्ट ना हो और अभिमान ना आए, जो भी मिल रहा है वो प्रभु प्रसाद समझो। ये बहुत बड़ी मुरली है, बाप दादा के पास टीवी है, सबका मूड का वहाँ आते रहता है, कितना मज़ा आता होगा देखने में बाबा को, बाबा बहुत एंजॉय करते ऊपर बैठ के, बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है, उसमें सबकी भिन्न भिन्न मूड आती है, एक ही दिन में सुबह एकदम हंसते हुए नाचते हुए, फिर दोपहर में कोई इंसल्ट कर देता है अपमान कर देता है तो उदास नाराज, फिर शाम को कोई तारीफ कर देता है तो फिर मूड खुश, सारा खेल मैं का है, अहंकार का, अहंकार को जो खुशी देता है उसके पास जाने की इच्छा होती है, और जो अहंकार को ठेस पहुंचाता है उससे हम दूर दूर भागते, वो वहां से आ रहा है हम इधर से क्योंकि सारा खेल का है मैं का। नेक्स्ट 25 अक्टूबर 2002, ये बहुत अच्छी पॉइंट का, ये हॉस्पिटल नहीं है, केवल नॉम हॉस्पिटल है लेकिन आत्माओं को बाप से मिलाने का साधन है, केवल नाम हॉस्पिटल है परंतु क्या है ये, आत्माओं को बाप से मिलाने का साधन। रोज इतने, रोज की ओपीडी 300 की होती है लगभग सारे डिपार्टमेंट्स मिला के, और हर दिन और एक मास में लगभग 300 एडमिशन्स सारे डिपार्टमेंट्स के मिला के, और हॉस्पिटल में बहुत सारे, जैसे अभी भामाशाह स्कीम है एक जो अभी पहले थी, अभी वो उसके साथ जोड़ दी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के साथ, तो उसमें कई सारे लोगों की फ्री ट्रीटमेंट होती है, और जो CRPF है यहाँ का वो भी इससे से जुड़ा हुआ है, तो वो जितने CRPF के लोग हैं वो सब का लिंक है, इंश्योरेंस है वो सब, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग संपर्क में आते हैं, और बहुत सारे लोग CRPF में भी अभी बहुत सारे भाई बहन हैं जो ज्ञान में चल रहे, कुछ कुछ क्लास में भी आते हैं, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो संपर्क में आते ही है और सेवाओं से प्रभावित होते हैं, और जितने साधु महात्माएं हैं उनके सारा फ्री ट्रीटमेंट होता है, फुल कंप्लीट फ्री, जितने गरीब है सब फ्री। नेक्स्ट मुरली 3 फरवरी 2005, हॉस्पिटल का विशेष पाठ है, हॉस्पिटल खुली है सब, तब से सबकी नजर में आ गया है कि ब्रह्मा कुमारी सिर्फ ज्ञान नहीं देते लेकिन समय पर मदद भी करती है, सोशल सेवा भी करते, तो हॉस्पिटल के बाद आबू में यह वायुमंडल बदली हो गया, पहले जिस नज़र से देखते थे अब उस नज़र से नहीं देखते, यहाँ तक कि ये जो लोकल लोग हैं यहाँ के उनकी भी दृष्टि जो थी ब्रह्मा कुमारी इसकी की तरफ वो इतनी अच्छी नहीं थी, पर हॉस्पिटल में जब बीमार पड़ता है व्यक्ति और जब उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है तो वो दृष्टि थोड़ी बदल जाती है, नहीं तो हर एक के अपने धर्म होता है, अपना एक बिलीफ होता है, मानने वाले होते हैं, यहाँ पे आर्य समाज है, कितने सारे लोग हैं अलग अलग मत वाले, पर जब यहाँ पे आर्य समाज गुरुकुल है, गुरुकुल के कितने सारे बच्चे वो सब आते हैं हॉस्पिटल, शंकर मठ कितने सारे हैं, संत सरोवर के जितने हैं, वो जितने मंदिर हैं यहाँ के, रघुनाथ मंदिर से लेके सब 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 सभी आते और खुश होके जाते। तो ये भी एक है, अभी सहयोग की नजर से देखते हैं, ज्ञान माने या ना माने, हम तो कभी चर्चा भी नहीं करते हॉस्पिटल में, कभी कोई ज्ञान की चर्चा नहीं, कभी किसी को कोई ज्ञान नहीं देते। हाँ, जिनके पास समय है और जो दे सकते वो देते, उनकी अच्छी ओपड़ी अच्छी चलती और उसमें भी बहुत खुश हो जाते लोग। ज्ञान माने या ना माने, पर सहयोग की नजर से देखते। अगली मुरली 15वीं, अशोक मेहता सर आए हैं, उनसे बाबा मिल रहे हैं। इस हॉस्पिटल से भी कई VIP को संदेश मिलेगा, हेल्थ का नाम सुनकर के अट्रैक्शन होती है, जैसे यहाँ भी ग्लोबल हॉस्पिटल खुलने के बाद वायुमंडल चेंज हो गया। हेल्थ का नाम सुन के सब आजकल हेल्थ कॉन्शियस बहुत है। ज्ञान सुनाओ तो किसी को पसंद नहीं है, पर उनको कहो ये तुमको डायबिटीज है ना, उसमें ये करना चाहिए, तुमको शुगर है ना, तुमको BP है ना, हाँ तब मानते हैं, बाकी नहीं मानेंगे। आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनना सबको पसंद थोड़ी आता है, इरिटेट हो जाते लोग, प्रवचन समझते, कहते धर्म की बातें, हम हमारे पास टाइम कहाँ है। लोग यहाँ उठते हैं रात में, आबू तीर्थ, आबू टूरिस्ट प्लेस है, दुकानें कब बंद होती है, 12 बजे 1 बजे। हमारे जो पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं रात को सोते कितने बजे, 2 बजे 12 बजे तो घर आते, 1 बजे भोजन करते, फिर TV देखते, 2 बजे सोते, 10 बजे उठते, फिर 12 बजे से दुकान चालू। ये दिनचर्या है लोगों की। अब इनको हम कहे आत्मा, अमृत वेला, परमात्मा, नहीं हो पाता, मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि उनकी दिनचर्या ये है। और वो क्या करे, क्योंकि टूरिस्ट है, टूरिस्ट का टाइम शाम का है, सुबह थोड़ी टूरिस्ट होते, मार्केट दुकानें सब तो वहां। फिर धीरे धीरे जब उनको समझ में आता है कि ये दिनचर्या से कितनी हानि है, एसिडिटी, गैस, कितने जितने होटल्स है माउंट में, उनके जितने वेटर्स और ये सारे लोग है सब आते, पर इस कौन सी समस्या, पेट की, क्योंकि वो घर पे नहीं खा पाते, क्योंकि उनको शाम की ड्यूटी होती है तो रात का भोजन उनका होटल का होता है। दूसरे ये फोटोग्राफर्स नक्की पर जो होते हैं ना, वो सारे, फिर वो घोड़े चलाने वाले, ये सब हमारे दोस्त है पुराने दोस्त है इनसे, घोड़े चलाने वाले, फोटोग्राफर्स, दुकान वाले ये सब, पीने वाले इनसे तो बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती है, आते ही रहते हैं ना। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में 16वीं मुरली 31 मार्च 2007, डॉक्टर अशोक मेहता सर से मिल रहे हैं। एवर रेडी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया, पुरुषार्थ में भी एवर रेडी, हॉस्पिटल का काम तो चलता ही रहेगा, नवीनता करके दिखाओ, ऐसी प्रसिद्धि हो, जैसे कहते हैं कि यह दवाई इस हॉस्पिटल में अच्छी मिलती है, यह ऑपरेशन यहाँ अच्छा होता है, ऐसा यह प्रसिद्ध हो जाए कि कर्मयोगी ग्रुप अगर देखना है तो यहाँ आके देखो, ये प्रसिद्ध हो जाए। क्या प्रसिद्ध हो जाए? कर्मयोगी ग्रुप, कि अभी अभी पेशेंट की सेवा कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, और अभी अभी योग, अभी अभी ज्ञान, अभी अभी तपस्या, अभी अभी आध्यात्मिक सेवा, सबका कॉम्बिनेशन हो, बैलेंस। और डॉक्टर प्रताप भाई से भी बाबा मिल रहे हैं यहाँ पर। बाप दादा जानते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कोई फिक्र नहीं, करते रहो, उड़ते रहो। उसके बाद में बाप दादा का सर्टिफिकेट ठीक है। 17वीं मुरली 15 दिसंबर 2007, इसमें भी फिर से खुशियाँ, दुआएं, अशोक मेहता सर से बात कर रहे बाबा, एडिशन करो, पुण्य का खाता। और लास्ट मुरली है, हॉस्पिटल को 20 साल पूरे हो गए 2011 में, अभी 30 साल पूरे हो गए 2019 21 तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, हॉस्पिटल ने अनेक आत्माओं को परिवार में लाया है। आबू की हॉस्पिटल के बाद लोगों में यह वाइब्रेशन जो था कि पता नहीं ये क्या करते हैं, अभी यह सोचते हैं कि यह डबल सेवा कर रहे हैं, शरीर के लिए भी आत्मा के लिए भी डबल पार्ट बजा रहे। इसके लिए जहाँ भी सेवा कर रहे हो तो सेवा की मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा को अच्छा लगता है, डबल डॉक्टर बने हो, डबल सेवादारी बने हो, अभी हर एक और आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा अच्छा है, सेवा में अच्छे थे, अच्छा। तो हॉस्पिटल का विस्तार भी होते गया, 4 प्रोग्राम बताए, 6 एकेडमिक्स बताए, 4 आउटरीच बताए और 5 उसकी ब्रांचेस। तो ऐसे धीरे 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 विस्तार होता गया, होता गया, होता गया। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। हर तरीके से सबका कल्याण ज्ञान करना, केवल आत्मा का ज्ञान सुना कि नहीं, केवल परमात्मा का ज्ञान सुना कि नहीं। अगर कोई दुखी है, शरीर में बीमारी है, उसकी उस समय मदद करना, जब योग का समय है, जब योग का समय है, अपना योग छोड़कर किसी की मदद करना, ये त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है। कर्म करो, निस्वार्थ करो, पुण्य करो, परमार्थ करो, दिल से प्रभु को प्रेम करो, योगी बनो, पुरुषार्थ करो। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन उसका अनमोल है, शिथिल जिसके बोल है, प्रभु प्रसन्न रहे जग में, उसका ही जग में मोल है। कर भला तो होगा भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, फिर से एक बार बता रहे, कल से, आज से क्लास 5:15 चालू होगी, क्योंकि इंग्लिश की जो सीरीज थी 108 दिन की वो पूरी हो गई है। तो कितने दिन बाकी है आज का, 125 दिन, 8 दिन बाकी है, 100 दिन संगम योग के। तो आज सेंचुरी पूरी हुई भट्टी की और साथ साथ SFV की भी, सॉलिड फूड वैकेशन रसाहार। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं किया रसाहार आज तक, बिल्कुल किया ही नहीं, विद्रोह कर दिया शरीर ने, बिल्कुल हम नहीं करेंगे, हमसे होता नहीं, एक दिन, अंतिम 8 दिन बाकी है, कम से कम ये 8 दिन तो कर दो तो पूरे 100 दिन का पुण्य मिल जाएगा। 8 दिन कर लो तो पूरे 100 दिन का पुण्य मिल जाएगा। रसाहार अर्थात जूसेस, लिक्विड, सूप, स्मूदीज, चबाना नहीं, केवल पीना, ये 8 दिन कम से कम, ठीक है। तो 8 दिन बाकी है, तो हम कल से वो चालू करेंगे, और मुरली का क्लास का टाइम है 5:15। ओम शांति।
करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो के जीने की ये है कला। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला, करते चलो। कला करते चलो।